ये आकाशवाणी दिल्ली है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में उनकी जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 4,50,00,000 वृक्षारोपण का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावित होंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। भाजपा सांसद ओम बिरला को आज 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें ध्वनिमत से चुना गया। विपक्ष ने इस पद के लिए कांग्रेस सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसने सदन में मत विभाजन की मांग नहीं की। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू श्री बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। इससे पहले जब आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने श्री बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष की ओर से शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले और समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने श्री सुरेश के पक्ष में प्रस्ताव पेश किया। श्री बिरला पिछली लोकसभा में भी अध्यक्ष थे। अपने संबोधन में श्री ओम बिरला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।
18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ काम करें। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 मान्य सदस्य पहली बार चुनकर आए। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने श्री बिरला को उनके निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा, श्री बिरला के दूसरी बार निर्वाचित होने से आज इतिहास बना है। उन्होंने कहा कि सदन अगले 5 वर्षों में उनके मार्गदर्शन में काम करेगा।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सबका विश्वास है कि देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्री बिरला को बधाई देते हुए कहा कि ये सदन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज कहा कि अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जाना दिल्ली वासियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है उसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2022 में दायर किया था। श्री सचदेवा ने कहा कि सीबीआई के पास पहले से ही एक अलग मूल मामला था जिसमें केजरीवाल को पहले भी सीबीआई कार्यालय बुलाया गया था और मनीष सिसोदिया पहले से ही इस मामले में गिरफ्तार हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह कल शाम से आप नेता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं वो उनके लोकतंत्र में न्यायपालिका के प्रति विश्वास की कमी को दर्शाता है। दिल्ली में झरोदा कला स्थित दिल्ली पुलिस अकादमी में आज मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबलों के अब तक के सबसे बड़े बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। विशेष पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था दीपेंद्र पाठक परेड में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि प्रशिक्षण पुलिसिंग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
प्रशिक्षण पुलिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है और दिल्ली पुलिस एकेडमी में आज जो ट्रेनीज का पासिंग आउट परेड हुआ है, बहुत ही शानदार परेड के साथ जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने ओथ लिया है और दिल्ली पुलिस परिवार में शामिल हुए हैं और दिल्ली के सिटीजन्स को बेस्ट पब्लिक सर्विस डिलीवरी देने का प्रण लिया है। और हम समझते हैं कि ये जो नया बैच दिल्ली पुलिस से जुड़ेगा, इससे दिल्ली पुलिस इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी एंड दिल्ली के सिटीजन को एक बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था में योगदान के रूप में हम इसे देखते हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया कि परेड में कुल 1,351 हेड कांस्टेबल शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 4,50,00,000 वृक्षारोपण का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है। ये कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किया जाएगा। पिछले वर्ष पूरे एनसीआर में लगभग 3,85,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य था, जिसमें से इस वर्ष लगभग 3,60,00,000 सफलतापूर्वक पौधारोपण किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि आयोग शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान आधारित संगठनों और अन्य वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों में बड़े पैमाने पर हरियाली और जैव विविधता पर जोर दे रहा है। एनसीआर में सभी सड़क एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वे प्रमुख सड़कों के किनारों पर भी हरियाली रखें। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अगले महीने की पहली तारीख से प्रभावी होंगे। इन विधेयकों को पिछले वर्ष शीतकालीन सत्र में संसद में पारित किया गया था। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली सृजित करना है। नए आपराधिक कानूनों के मुख्य प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, किसी भी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराना और पीड़ितों को प्राथमिकी की मुफ्त प्रति उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर उसे अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति की जानकारी देने का अधिकार होगा। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा की जांच को प्राथमिकता दी गई है। इस तरह के मामलों का निपटारा सूचना दर्ज होने के 2 महीनों के भीतर करना होगा। नए आपराधिक कानून में गंभीर अपराध और साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों का जाना आवश्यक कर दिया गया है। समन अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाएंगे। इससे कानूनी प्रक्रिया में सुविधा होगी, कागजी कार्य में कमी आएगी और मामले में संबंधित सभी लोगों के बीच कुशल संपर्क हो सकेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रौद्योगिकी क्षमता वर्धन और 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सूत्रों ने बताया है कि नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्रवाई में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम सीसीटीएनएस एप्लीकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं। ये नई व्यवस्था निर्बाध परिवर्तनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। सत्तारूढ़ एनडीए सांसदों ने आज 1975 में आपातकाल लगाए जाने के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ सांसदों ने तख्तियां दिखाते हुए नारे लगाए और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। मीडिया से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 1975 में आज ही के दिन पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने उस दिन सुबह सुबह एक बैठक बुलाई थी और आपातकाल लगाया था। आज हमने सदन में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि ऐसी घटना कभी नहीं दोहराई जाएगी और संविधान को कभी नष्ट नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकनायक अस्पताल में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से मुलाकात की। सोमवार को भूख हड़ताल के कारण आतिशी का शुगर लेवल कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा से अधिक पानी की मांग को लेकर इस महीने की 21 तारीख को शुरू हुई भूख हड़ताल उनके अस्पताल में भर्ती के बाद खत्म कर दी गई। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि राजधानी दिल्ली में पैदा हुआ जल संकट आम आदमी पार्टी के नेताओं की साजिश का नतीजा है। श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार और खराब नीति के कारण पानी की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद दिल्ली वासियों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और टैंकर माफिया एक दूसरे से मिले हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में उनकी जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 4,50,00,000 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावी होंगे। यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे विभिन्न स्थानों के लिए ग्रीष्मकालीन ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर रेलवे ने डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा तक के लिए इस महीने की 29 तारीख से लेकर दोनों तरफ के लिए अगले महीने की 11 तारीख तक विशेष ट्रेन चलाएगी। डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा के लिए 29 जून को सुबह 10:30 बजे रवाना होगी, जो अगले दिन दोपहर 2:50 पर कटरा पहुंचेगी। ये ट्रेन सोमवार, बुधवार और शनिवार को डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलेगी। ये ट्रेन वापसी में 30 जून को कटरा से 10:10 पर रवाना होगी। अगले दिन 11:50 पर डॉक्टर अंबेडकर नगर पहुंचेगी। कटरा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए ये ट्रेन मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी। उधना से छपरा के बीच 30 जून से 7 जुलाई तक एक विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। ये ट्रेन उधना से सुबह 11:15 बजे रवाना होगी। अगले दिन शाम 5:35 पर छपरा पहुंचेगी। 1 जुलाई को ये रेलगाड़ी छपरा से सुबह 7:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन 11:00 बजे उधना पहुंचेगी। छपरा से उधना के बीच चलने वाली ये ट्रेन 8 जुलाई तक चलेगी। मुंबई सेंट्रल से अमृतसर के बीच विशेष रेलगाड़ी 27 जून को मुंबई सेंट्रल से 11:30 बजे रवाना होकर 29 जून को सुबह 10:30 अमृतसर पहुंचेगी और 29 जून को अमृतसर से मुंबई सेंट्रल के लिए 3:00 बजे रवाना होकर अगले दिन 11:55 पर मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। दुबई की अंतर्राष्ट्रीय संस्था साहित्य अर्पण और हंसराज कॉलेज संयुक्त रूप से राजधानी दिल्ली में इस महीने की 29 तारीख को साहित्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के 2 सत्र होंगे। प्रथम सत्र में साहित्य और बॉलीवुड के विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सेवानिवृत्त एसीपी वेद भूषण और बॉलीवुड अभिनेता राकेश श्रीवास्तव भाग लेंगे। दूसरे सत्र की शुरुआत गीत संगीत से शुरू होगी, जिसमें उत्तराखंड के जाने माने गीतकार और संगीतकार अनिल नोडियाल तथा उनके साथ संगीतकार अखिल बहुगुणा अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके बाद बच्चों की बाल चौपाल लगेगी, जिसमें बच्चे काव्य पाठ द्वारा सभी के मन को लुभाएंगे। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुबई की नेहा शर्मा और हंसराज कॉलेज की प्राचार्य रमा द्वारा किया जाएगा। राजधानी के अलग अलग इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में उनकी जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 4,50,00,000 वृक्षारोपण का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावित होंगे।